ओम शांति। अव्यक्त मुरली 21-1-87। मुख्य हेडिंग है स्वराज्याधिकारी ही विश्व राज्याधिकारी। राजाओं के राजा बनाने वाले भाग्य विधाता भगवान अपने बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी बनने के अभ्यासी बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यही संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। बाबा कहते, चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है, तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाबा कहते, बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। बाबा कहते, चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? तो बाबा कहते, सर्व खजानों की श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं, दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना, बाबा कहते अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं है कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हो। बाबा कहते जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं उन सब से खजाने अनेकानेक गुना ज्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो, दाता के पास कमी नहीं है। लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। बाबा कहते ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। सभी की मधुबन में आने की मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की रहने की जगह तो मिली है ना। बाबा कहते मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहां तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज बनाओ। बाबा कहते संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। कितना जमा किया है बाबा पूछ रहे हैं। इतना किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो। वहां बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में भी सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? बाबा कहते एक ही लगन, एक ही बातें, एक ही परिवार के एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। बाबा कहते हैं कई बच्चे रूह रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पोंड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य तीन कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? पहला मन अर्थात संकल्प शक्ति, दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। बाबा कहते सतयुग में मंत्री नहीं होंगे लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। बाबा कहते किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं, इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहां बुद्धि लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। बाबा कहते संस्कार आपके वश है या आप संस्कारों के वश हो। राज्य अर्थात अधिकार, राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करें वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आपको कहो एक बात वह करें दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। बाबा कहते योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाबा कहते बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेतायुगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए? वह हुई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा, प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बाबा कहते यह है ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं अंत में तो बन ही जाएंगे। बाबा कहते अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं व डगमग स्थिति करते रहते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा तो सब क्या बनने चाहते हो? राजा बनने चाहते हो? तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो वा यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे, गे गे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उलहना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कब नहीं अब, कब हो जाएगा नहीं अब होना ही है, बनना ही है, अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। बाबा कहते जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन करके रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्म इंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व साथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। बाबा कहते स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। जैसे राजा अर्थात दाता, तो दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूंद है, बाहर ड्रामा कर रहे हैं ना, दूसरे लोग कभी हाई ड्रामा करेंगे कभी वहां ड्रामा, और आप सदा क्या कहते हो, वहां ड्रामा वहां। बाबा कहते जब प्राप्ति होती है ना तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है, तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है, खाने पर ठहरना पड़ता है, खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ और क्यू में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। बाबा कहते यही काम करना है ना, यह भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो फिर वृद्धि होगी ना, ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो, जैसा समय वैसे अपने आप को चला सके। तो पट में सोने की भी आदत पड़ गई ना, ऐसे तो नहीं खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई। टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई ना। अच्छा लगा? ठंडी तो नहीं लगती? बाबा कहते, अभी सारे आबू में टेंट लगाएं। टेंट में सोना अच्छा लगा या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को ही पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हॉल में पट में टिफुटी अर्थात 3 फुट देकर सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहां से शुरू की? टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। साकार पाठ के होते भी टेंट में रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध के का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। याद है जब ये हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना? बाबा कहते, जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में ही जाना है। अच्छा सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं तो यह भी बेहद के हॉल का श्रृंगार हो गया। नीचे भी बैठे हैं। बाबा कहते, यह वृद्धि होना भी तो खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई लेकिन विधि पूर्वक चलना, ऐसे नहीं यहां मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहें वैसे चलें, ऐसे नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं, फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है तो जीवन तो सदा, जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना? जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं? बाबा कहते, सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा बाकी क्या रहा? टोली। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए, जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। बाबा कहते, वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्या की? बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ। जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाय मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हो, इसके लिए यह सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्ण संसार को लाएगी। जिसकी इच्छा सबको है कि अब कुछ दुनिया बदलनी चाहिए, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हैं। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हो कि सचमुच स्वर्ण दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ जब सैंपल तैयार हो तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। बाबा कहते ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना, ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ पर्सनल मुलाकात। हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी हैं। यह खुशी रहती है, आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। बच्चा अर्थात अधिकारी। बाबा कहते अधिकारी समझने से बाप का जो भी वर्षा है वह स्वतः याद रहता है। कितना बड़ा खजाना है, इतना खजाना है जो खाते खुटता नहीं है, और जितना औरों को बांटो उतना बढ़ता जाता है, ऐसा अनुभव है। परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं, इससे बड़ा नशा और कोई हो सकता है? तो यह अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं। यह गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्म वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। शक्तियां सदा खुश रहने वाली हो ना, कभी कोई दुख की लहर तो नहीं आती। बाबा कहते, दुख की दुनिया छोड़ दी, सुख के संसार में पहुंच गए। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते, बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। बाबा कहते, सदैव अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा अनुभव करते हो। महान आत्मा सदा जो संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, वो साधारण नहीं होगा, महान होगा, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे भी ऊंचे महान हुए ना। जैसे कोई आजकल की दुनिया में वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा ना, तो आपसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हैं। यह स्मृति सदा शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम, ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो। बाप हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब ऊंचे ते ऊंचे। अगर अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है, बाकी बाप सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए तो आप आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अभी तक गायन पूजन हो रहा है। बाबा कहते, कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो? यह हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। यह नशा होगा वहां माया की आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। सभी अपने आप से संतुष्ट हो। जैसे बाप सुनाते हैं वैसे ही अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यह है अपने आप से संतुष्ट रहना। ऊंचे ते ऊंचे, यही विशेष वरदान याद रखना। याद करना सहज है या मुश्किल लगता है? सहज स्मृति स्वतः आती रहेगी, माया कहां रोक नहीं सकेगी, सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा कहते, सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो। जो भी कदम याद में उठाते हो तो एक सेकंड की याद इतनी शक्तिशाली है जो एक सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हैं याद में नहीं उठाते तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है और हर कदम में पद्म तो कितने पद्म हो गए। इसलिए पद्मा पद्म भाग्यवान कहा जाता है। पद्म तो आपके आगे कुछ भी नहीं है लेकिन इस दुनिया के हिसाब से कहने में आता है। तो जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उसके चेहरे की फलक ही और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और हो जाती है। गरीब का चेहरा भी देखो और राजकुमार का चेहरा भी देखो, कितना फर्क होगा। उसके शक्ल की झलक फलक और गरीब के चेहरे की झलक फलक में रात दिन का फर्क होगा। आप तो राजाओं का भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो, तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वह पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं है। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मा पद्मपति बने हैं। अच्छा, ओम शांति।